प्रोग्रेस।
सर आज की क्लासेस की जो आखिरी क्लास है वो शुरू कर लेते हैं। सही है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिहि लज़ीन अस्तफा, अम्मा बाद, फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال الله تعالى في مقام آخر: وكل وعد الله الحسنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. मैं सोच ही रहा था आप लोगों को एक बात बताऊं, अपना छोटा सा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सोच रहे थे, तो फिर यहाँ पे देखा कि एक सवाल किसी बच्चे ने या किसी ने किया हुआ था, तो अब इस सवाल के जवाब में अब वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि उनका सवाल जो था उसी से रिलेटेड है। तो बच्चे ने सवाल किया था शायद मौलाना साहब के यहाँ छूटने के बाद, तो उन्होंने लिखा कि कैन वी फाइंड मदरसाज ओवर हियर। तो ओवर हियर में पहले आप तो ये बताए ना, आप हैं किधर, क्योंकि जूम में तो आप कहीं से भी हो सकते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब में भी हो सकते हैं, किसी और मुल्क के भी हो सकते हैं। तो वो आपने नहीं लिखा कि वेयर हियर, तो उन्होंने जवाब दे दिया रियाद। सही है। तो कैन वी फाइंड मदरसाज इन रियाद। तो इसके जवाब में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताना था आप लोगों को कि जब हम पहली दफा रियाज आए ना, तो ये वो दिन थे कि जब हम खुद भी मदरसे में पढ़ रहे थे, ठीक है, यानी इतनी बड़ी उम्र होने के बाद, क्योंकि हम वैसे तो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, सही है, आईटी स्पेशलिस्ट, वो पढ़ा था कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में। तो फिर उसके बाद जब हमारी उलमा से मुलाकात हुई, तो फिर हमने थोड़ा सा जो है वो दीनी उलूम भी साथ साथ पढ़ने शुरू कर दिए। तो इस तरह से करते थे कि सुबह सुबह ना फजर की नमाज पढ़ने के लिए जिस मस्जिद में जाते थे ना, वो वही मस्जिद होती थी जिसमें हमारे उस्ताद साहब भी नमाज पढ़ने के लिए आते थे। वो उस्ताद साहब ने कह दिया था कि तुमने पढ़ना है तो फिर इस मस्जिद में आके तुम्हें नमाज पढ़नी होगी। अच्छा, वो मस्जिद इतनी दूर होती थी घर से कि वहां पे ड्राइव करके आधा घंटा सुबह फजर से पहले ड्राइव करके फिर उस मस्जिद में पहुंचते थे, और उस मस्जिद में पहुंच करके नमाज पढ़ते थे, और नमाज के फौरन बाद बैठ जाते थे, और उस्ताद साहब जो है ना वो क्या पढ़ाते थे, वो फाला की गर्दान पढ़ाते थे। कहते थे ये गर्दान ऐसे होती है, अब तुम इसको याद करके आओ कल दोबारा, और कल तुमने मुझे ये गर्दान सुनानी है, अगर जरा सी भी गलती हुई तो फिर दोबारा याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जरा सी भी गलती होती थी तो दोबारा याद करते थे, और अगले दिन फिर आकर के सुनाते थे। और इस तरीके से करते करते इल्मु सर्फ से जो है वो दीनी उलूम की इब्तिदा करी। तो फिर उसके बाद अब अपने शेख से मुलाकात हुई, उन्हीं उस्ताद साहब के वास्ते से फिर शेख जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। तो वहां उन्होंने फिर कहा कि भाई आप दीनी उलूम की किताबें ऐसे तो पढ़ रहे हैं, सुबह फजर में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस चले जाते हैं, तो अब जो है ना आप बाकायदा इम्तिहान भी देना शुरू करें, जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना, जिस तरह से आपके बोर्ड्स हैं इंडिया के अंदर, CBSE का बोर्ड होता है और NIOS का बोर्ड होता है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो फेडरल बोर्ड होता है या पंजाब बोर्ड होता है, सिंध बोर्ड होता है, और फिर ब्रिटिश काउंसिल के बोर्ड्स होते हैं जिसको के GCSE का बोर्ड कहते हैं, ओ लेवल्स के एग्जाम जिस बोर्ड से आप दे रहे होते हैं। तो उसी तरीके से मदारिस अरबिया का भी एक बोर्ड है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर शायद बोर्ड्स नहीं है, इंडिया में इंडिविजुअल मदरसों का ही सारा सिस्टम होता है, लेकिन पाकिस्तान में बाकायदा बोर्ड ऑफ एजुकेशन है जिसको के वफाकुल मदारिस का बोर्ड कहते हैं। तो हमारे शेख ने फिर हमें फरमाया कि अब तुम लोग जो है ना, यानी मैं और मेरी वाइफ जो थी, अब आप लोग जो हैं वो बाकायदा बोर्ड का एग्जाम भी दें। हम रहते थे अमेरिका में, उन्होंने कहा अमेरिका में तो कोई बोर्ड वोर्ड नहीं है, नहीं पाकिस्तान आकर के दो। ठीक है, तो हम सिर्फ पाकिस्तान जो है वो वहां से ट्रेवल करके जाते थे सिर्फ बोर्ड का एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो ये वही दिन थे कि जबकि हमारे बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, शुरू के 4 साल तो शायद हो चुके थे, तो जब 5वें साल का की पढ़ाई कर रहे थे तो तब जो है ना फिर रियाज भी मूव हो गए। तो अब जब रियाज मूव हुए, वो जॉब के लिए मूव हुए थे और पढ़ाई साथ साथ चल रही थी इसी तरह से ऑनलाइन पार्ट टाइम उस्ताद के साथ बैठ करके, तो अब यहाँ पर आए ना, तो यहाँ पे हमने सड़कों पे देखा कि सड़क के बराबर में एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर लिखा हुआ है मदरसतुल उलूम, ठीक है, और किसी पे लिखा हुआ है आलमियत का मदरसा, यानी मदरसतुल आलमिया, इस तरह के ना बाकायदा बोर्ड्स लगे हुए बड़े बड़े। तो हमने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, यहाँ तो इतने सारे सारे बड़े बड़े मदारस यहाँ हो जाए, चलो यहाँ जाकर के पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तो इतना आसानी हो गई, यहाँ पे मदारस इतने सारे मौजूद हैं। लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पे मदारिस जो है ना, ये असल में अरबी जुबान का लफ्ज है ना मदरसा, अभी मौलाना साहब ने बताया था कि ये दरसा से निकला, तो दरसा का मतलब होता है पढ़ाना। तो अरबी में किसी भी जगह जहां पे तालीम पढ़ाई जाती है, तालीम दी जाती है, उसको मदरसा कहते हैं। तो यहाँ पे रेगुलर स्कूल जो है ना, वो असल में रेगुलर स्कूल्स थे जहां पर कि आपको इंग्लिश और साइंस और मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी और इस किस्म की चीजें पढ़ाई जाती है, थोड़ी बहुत जो है वो इस्लामियात भी पढ़ाई जाती है, थोड़ी बहुत जो वो अरबी भी पढ़ा दी जाती है, लेकिन असल में वो सेक्युलर स्कूल्स थे, वो मदारिस नहीं थे, यानी मदारिस दीनिया नहीं थे, जिनके बारे में अभी मौलाना साहब ने आप लोगों को बताया ना, ये मदारिस दीनिया की बात हो रही थी, दीनी उलूम के मदारिस की। तो बहरहाल, तो यहाँ पर ना इस तरह के ऑफिशियल मदारिस तो आपको कैद ना मिले, कोई मिलेगा भी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी वहां पर, तो ना मिले आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अगर दीन का इल्म हासिल करना है ना, तो उसका प्रॉपर तरीका यही है कि जो यहाँ पर उलमाए कराम मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर जो उलमाए कराम मौजूद हैं, तो उनसे बात करें कि मुझे ये किताबें पढ़नी है, मुझे आलिम प्रोग्राम के अंदर जो किताबें पढ़ाई जाती हैं वो पढ़नी है, तो आप मुझे बताएं कि मुझे कैसे पढ़नी है, कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, आप मुझे कोई वक्त दे दें और उनके साथ जाकर के पढ़ना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हमने अमरीका में पढ़ना शुरू किया कि भाई एक मौलाना साहब वहां पे मौजूद थे, पाकिस्तान के ही थे लेकिन वहां पे मौजूद थे, तो हमने उनसे जाके कहा कि हमें किताबें पढ़नी है, उन्होंने कहा ठीक है भाई आ जाना कल सुबह, ठीक है, तो उनके साथ पढ़ना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जो है ना फिर यहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा, सही है। अच्छा, तो ये तो पीछे वाली प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बात हुई, जजाकल्ला खैर मौलाना साहब के, उन्होंने इतना वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी काम की बातें हमें बताई। अगले हफ्ते के लिए हम कोई नेक्स्ट टॉपिक अनाउंस करेंगे कि किस टॉपिक के ऊपर फिर प्रेजेंटेशन होगी, या कौन सा वाला प्रोफेशन या कौन सा वाला फंक्शन दुनिया का, वो हम अगली क्लास के अंदर आप लोगों को प्रेजेंट करवाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, कमिंग बैक टू सहाबे कराम वाली क्लास, तो सहाबे कराम वाली क्लास में हम अशराए मुबशरा का टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी वो 10 सहाबा के जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने नाम लेकर के इस दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत दे दी थी, ठीक है, कि ये जन्नत में है, ये जन्नत में है। तो उनमें से हम अल्हम्दुलिल्लाह 9 सहाबा कराम के बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं, अशरा मुबशरा, अशरा मतलब 10, ठीक है, तो उनमें से 9 के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब जो है ना वो हम 10th एंड लास्ट जो अशरा मुबशरा में से सहाबी आते हैं उनका तस्करा शुरू कर रहे हैं, तो वो कौन है, कोई बता सकता है, जिन्होंने पहले नहीं चल, आपने पहले जवाब नहीं, अबू उबैदा बिन जर्राह रضي अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, अबू उबैदा, तो ये 10वें अशरा मुबशरा सहाबी बनते हैं। और जैसे कि आपको उनके नाम से पता चल रहा होगा कि ये जो अबू उबैदा है ये उनका दरअसल असल नाम नहीं है, क्योंकि ऐसे तो होता है ना जो अबू या उम्मू, तो ये तो कुनियत होती है ना, ठीक है, तो इनका असल नाम क्या था, इनका असल नाम था आमिर बिन अब्दुल्ला, तो इनके वालिद का नाम था अब्दुल्ला और इनका अपना नाम था आमिर, ठीक है, मैंने अब्दुल्ला क्यों पढ़ा ये कौन बताएगा, आमिर बिन अब्दुल्ला नाम तो उनका अब्दुल्ला था, तो फिर अब्दुल्ला कैसे बन गया,
बात
ठीक है, मुजाफ मुजाफ अलैहि की वजह से, कि बिन के बाद जब कोई नाउन आता है ना तो वो हालत जर में चला जाता है, तो वो बिन अब्दुल्ला पढ़ा जाता है, अब उसको अब्दुल्ला नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये बेसिक अरेबिक ग्रामर है। इंशाल्लाह जब आप लोग जो पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर उनको ये बात आसानी से समझ में आ जाएंगे कि कब अब्दुल्ला पढ़ना है और कब अब्दिल्ला पढ़ना है, ठीक है ना, और कब जो है वो अब्दल्ला पढ़ना है कभी अब्दल्ला भी पढ़ना होता है, सही। अच्छा, तो इनका नाम था आमिर बिन अब्दुल्ला, ठीक है। ये कुरैश में ही होते थे, जाहिर कुरैश के ही आदमी थे, मक्का मुकरमा में रहते थे। नबी अलैहिस्सलाम के ये दूर के रिश्तेदार बनते थे, दूर के कजन। दूर के कजन का मतलब क्या कि इनके अब्बू के अब्बू के अब्बू के अब्बू के अब्बू के अब्बू बहुत ऊपर जा करके, ठीक है। एक थे फहर, फहर बिन मालिक। तो फहर बिन मालिक जो थे ना, वहां पर जा करके नबी अलैहिस्सलाम का भी जो फैमिली ट्री था वो इनसे जाकर के मिल जाता था, यानी अबू उबैदा बिन जर्रा का ऐसे ऊपर जा रहा है। फहर बिन मालिक जब आएंगे ना, इनके ग्रेट 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 ग्रैंडफादर्स के अंदर, तो वही जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के भी ग्रेट 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 ग्रैंडफादर बनेंगे। इस तरह से वो शजरा ऊपर जा करके मिल जाता है, ठीक है। तो पीछे भी हम दूसरे सहाबा के बारे में भी इस तरह से आपको बताते रहे हैं कि कहाँ जा करके उनका शजरा नबी अलैहिस्सलाम से मिलता था, ठीक है। इसको ट्राइब कहते हैं, ये जो बनता है ना इस तरीके से कि रिश्तेदारी तो है लेकिन बहुत दूर के रिश्तेदारी है। तो ये दूर की रिश्तेदारियां, ये पुराने जमाने में ना ये लोग एक ही जगह पे रहते थे, ठीक है। यानी बहन भाई तो एक घर में ही रहते हैं ना, लेकिन कजन्स जो हैं वो तो एक घर में नहीं रहते, कजन्स तो दूसरे घर में रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो दूसरे घर भी बराबर में ही हो, एक ही शहर में हो, एक ही जगह पर हो, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है कि बहन भाई तो चलो एक घर में अक्सर रह लेते हैं, कुछ जगहों पर तो ये भी नहीं होता कि बहन भाई भी एक घर में नहीं रह रहे होते, लेकिन चलो अक्सर घरों में बहन भाई एक साथ रहते हैं। लेकिन जो कजन्स होते हैं वो फिर करीब नहीं रहते बल्कि बहुत दूर रहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कजन बैठे हुए हैं तो एक कजन जो है वो रियाज में रहते हैं, दूसरे कजन सकाका में रहते हैं, है ना, जो कि हंड्रेड ऑफ माइल्स यहाँ से, पता नहीं कितने माइल्स दूर है यहाँ से। और बाकियों के कजन जो है वो कोई जो है वो पाकिस्तान में रहता है, कोई इंडिया में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, कोई पता नहीं कहाँ रहता है, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सारे कजन जो थे वो एक ही शहर के अंदर रहते थे। इवन जब हम छोटे थे ना तो हमारे जमाने में भी हमारे तकरीबन सारे कजन्स कराची में रहते थे, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई किधर गया, कोई किधर गया, कोई किधर गया, तो सारे बिखर गए, ठीक है। बहरहाल अल्लाह ताला दोबारा सबको इकट्ठा कर दे भी कहीं पे अच्छी जगह पे, अच्छी जगह पे इकट्ठा करते हैं, बुरी जगह पे नहीं इकट्ठा करते। अच्छा, तो ये जो आमिर बिन अब्दुल्ला थे ये नबी अलैहिस्सलाम के एक बहुत डिस्टेंट कजन थे, लेकिन रहते सारे के सारे वहीं पे मक्का मुकरमा में रहते थे, ठीक है। अच्छा, इनके जो है वो इस्लाम लाने का मामला क्या हुआ, कैसे इस्लाम लेकर के आए थे, ये किसी को किसी की जनरल नॉलेज के अंदर है कि ये इस्लाम कैसे लेकर के आए? नहीं हुआ? कोई अनोखा वाकया नहीं है वैसे इसका, हमारे लिए अनोखा है लेकिन वैसे कोई अनोखा वाकया, यानी ये नहीं कि वो किसी समुन्दर में जा रहे थे और डूबने लगी कश्ती और उन्होंने दुआ मांगी कि मुझे अल्लाह ताला हिदायत दे दे, इस तरह से वो मुसलमान हो गए, या उनको ख्वाब में चांद नजर आया जैसे कि सात नबी वकाश ने, इनका ऐसा वैसा मामला नहीं, ठीक है। इनका बड़ा सीधा सा मामला है, कम से कम मेरे उनके हद तक इतना सीधा सा मामला है कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मुसलमान हुए ना, ठीक है, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला जो है वो फौरन अपने जानने वालों के पास गए और उन सबको जो है वो दीन इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी, ठीक है। तो ही वॉज वन ऑफ देम कि जिनके पास अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह पहुंचे और उनसे कहा कि भाई ये सादिक है, ये अमीन है, और ये जो बात हमें बता रहे हैं ये कोई पैसे के लिए नहीं बता रहे कि इनको कोई पैसे चाहिए, इनको मालो दौलत चाहिए, इनको शोहरत चाहिए, बिल्कुल खैरख्वाही के लिए बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, फायदे की बात कर रहे हैं, हमारा नुकसान खत्म हो जाएगा अगर हम इनकी बात मानना शुरू हो जाएंगे। तो भाई मैं तो मान चुका हूं, मैं तो मान चुका हूं उनकी बात, आप भी मान लें, ठीक है। तो इस तरीके से अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया, नबी अलैहिस्सलाम को और दीन इस्लाम को क्या किया, ये जवाब कौन देगा? अंग्रेजी में मुझे चाहिए इसका जवाब, एक लफ्ज का जवाब चाहिए।
सपोर्ट
और
एम्पावर
अच्छा, लेकिन एस से आता है जवाब, तो मुझे चाहिए सपोर्ट तक तो पहुंच गए आप क्या क्या चले एस, इतना तो हिंट मिल गया।
राइट
स्प्रेड किया,
स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथन किया। अच्छा, सपोर्ट स्ट्रेंथन, लेकिन
यूज प्रोफेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
हाँ वो भी करनी बहुत जरूरी है। दावत तो तबलीग की प्रेजेंटेशन भी करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम और दीन इस्लाम को उन्होंने, माशाल्लाह, ऑनलाइन उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, सेल किया। क्या किया? सेल किया। ठीक है, सेल्स कहते हैं उसको, सेल्स। ठीक है, सेल्स के बाद फिर सपोर्ट आती है। सपोर्ट पहले नहीं करना होता, पहले सेल करना होता है, फिर उसके बाद सपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो दीन इस्लाम की दावत और तबलीग जो है ना, ये एब्सोल्यूटली ये सेल्स है। ठीक है ना, सेल्स है। अब सेल्स का मतलब यहां पर ये नहीं है कि दुकान चले गए आप तो दुकान वाले अंकल ने आपको टॉफी दे दी, 2 रुपए ले लिए, टॉफी दे दी, ये वाली सेल्स की बात नहीं हो रही। ठीक है, इसको भी तो सेल्स कहते हैं ना, कि आप गए और आपको पहले से कोई चीज चाहिए, आपने दुकान वाले से कहा कि मुझे जो है वो ये आप दूध का डब्बा दे दें, तो दुकान वाले ने आपको दूध का डब्बा दे दिया और कहा कि हाँ भी मुझे 20 रियाल दे दो। ठीक है, ये 14 रियाल कल आपने बताया, 14 रियाल का मिलता है दो, ये वाली सेल्स नहीं। बल्कि आप जो है वो किसी बंदों को पकड़ें और उसको ये बताएं कि भाई आपकी हड्डियां जो है ना वो हो रही हैं कमजोर। ठीक है, देखें आप जो चल रहे थे ना, तो आपके चलने में जो है ना वो आप सही से चल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आपकी टांगे जो है ना वो बहुत कमजोर हो गई हैं। तो आपकी टांगे कमजोर हो गई हैं, इसकी वजह आपको पता है क्या है? क्या आपकी टांगे कमजोर हो गई हैं? कहते नहीं यार, मुझे, मैं तो पता, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं कि मेरी टांगे कमजोर हो गई। नहीं, आपकी टांगे कमजोर हो गई हैं यार, आप ऐसे सही नहीं चल रहे थे। ठीक है, फिर आप उससे पूछें कि आपको पता है कि टांगे कमजोर क्यों हो गई, क्यों आपसे ठीक नहीं चला जा रहा, तो वो आगे से क्या जवाब देगा? मुझे नहीं पता, आप बताएं। तो फिर आप उसको बताएं, इसकी वजह यह है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। क्या है? आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। ये कैल्शियम जो होता है ना, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। जब हड्डियां मजबूत होती हैं ना, तो टांगे भी मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, और जब टांगे मजबूत हो जाती हैं, तो फिर जो है वो आप सीधा सीधा चलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, या दौड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो कहेगा यार ये कैल्शियम की कमी है, इस वजह से मेरी टांगे ठीक नहीं काम कर रही। अब ये मुझे बताएं कि मैं कहां से कैल्शियम, कैसे कैल्शियम मेरे अंदर सही होगा? तो अब आप उसको बताएंगे, क्या बताएंगे? दूध पीने से कैल्शियम की कमी दूर होगी, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम होता है। दूध पीने से कैल्शियम की कमी दूर होगी। ठीक है, अच्छा, दूध पीने से, अच्छा ये दूध क्या चीज होती है, ये मुझे कहां से मिलेगा? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस जगह लेकर के जाता हूं जहां पे दूध बिकता है। ठीक है, मैं तुम्हें उस जगह लेके जाता हूं जहां पे दूध बिकता है। अब आप उसको लेकर के जाएंगे दूध की दुकान पर जहां पे दूध बिकता है, और उससे कहेंगे भाई दाएं जरा 14 14 रियाल दें। ठीक है, वो कहेगा यार मेरे पास 14 रियाल। कहते चल, पहले पहला दूध का डब्बा मैं खरीद के देता हूं आपको। क्या करेंगे अरुण भाई? कि पहला दूध का डब्बा ना मैं अपनी जेब से आपको खरीद के देता हूं, ताकि कम से कम आप कस्टमर तो बन जाए ना दूध के। ठीक है ना, और दूध का कस्टमर बनने से मेरा फायदा नहीं है। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांग रहा, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं भाई। तुम्हारे को, तुम्हें जब दूध मिलेगा तो तुम्हारी कैल्शियम की कमी दूर होगी, तुम्हारी कैल्शियम की कमी दूर होगी, तो तुम खुद जो है वो अच्छे से चलना शुरू हो जाओगे, फुटबॉल खेलने के काबिल हो जाओगे। राइट, ठीक है ना? तो मेरा तो कुछ उसमें फायदा नहीं है, फायदा तो तुम्हारा है ना। क्या ख्याल है, गलत है? इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको दाऊद भाई? इसको सेल कहते हैं, इसको सेलिंग कहते हैं। ठीक है, और दीन के टर्म में इसको क्या कहते हैं? इसको दावत व तबलीग करना कहते हैं। ये होती है दावत व तबलीग, ये होती है दावत व तबलीग। ये नहीं होती कि बस खरीदो खरीदो दूध है, बस खरीदो दूध, बस मैं कह रहा हूं ना खरीदो, बस खरीदो है, या जो है वो मेरी कंपनी का दूध है वो बड़ा अच्छा दूध है। मेरी नहीं, अच्छा भी नहीं, ये भी नहीं कह रहे कि अच्छा दो, मेरी कंपनी को दो ना, बस खरीदो, क्योंकि मेरी कंपनी है, ठीक है, या मेरे शेख का दूध है मेरे शेख के फाउंड का दूध है, इस वजह से खरीदो, वरना ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं तुम्हारी। दिस इज नॉट सेल्स, दिस इज नॉट सेल्स, दिस इज नॉट सेल्स, एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी गो ट्राई टू डू दिस दावत और तबलीग, दिस इज व्हाट वी डू, दिस इज व्हाट वी डू। मेरे शेख से जुड़ जाओ, मेरी मजलिस में आना शुरू कर दो, जिस तरह मैं टोपी पहनता हूं उस तरह की तुम भी टोपी पहनना शुरू कर दो, जिस तरह का मैं पजामा पहनता हूं तुम भी उसी तरह का पजामा पहनना शुरू कर दो, ठीक है, जिस तरह से मैं यूं फलानी चीज पढ़ता हूं तुम भी उसी तरीके से वो चीज पढ़ना शुरू कर दो। बट वी डोंट नो व्हाई, वी कैन नॉट टेल देम व्हाई, हम बता नहीं सकते बंदे को भाई क्यों। तो दैट्स व्हाई वी डोंट डू दावत तबलीग, वी डोंट डू सेलिंग, वी डोंट डू सेलिंग, ठीक है। अब दीन जो फैल रहा है ना, वो सेलिंग से नहीं फैल रहा, वो कैसे फैल रहा है, वो बंदा खुद ही उसको कहीं से पता चलता है कि हाँ यार ये ऐसा है, वो खुद ही कहीं पे पढ़ लेता है, ठीक है, वेबसाइट पे पढ़ लिया उसने, या उसने किसी किताब में पढ़ लिया कि जैसे कि मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, उसको खुद ही पता लग गया, अंदाजा हो गया किसी तरीके से, ठीक है। अब जो है वो दूध का भी उसको पता चल गया, उसको ये भी पता चल गया, दूध की दुकान वो खुद ही आ जाता है बेचारा दुकान के ऊपर, और वहां पे जो है वो दूध खरीद करके चला जाता है। भाई दावत और तबलीग तो कहीं नहीं हुई ना, ये सेल्स तो कहीं पे नहीं हुई ना, ये वो तो उसको खुद ही पता चल गया, आकर के दूध खरीद करके चला गया, ठीक है। तो दावत का काम कब होगा, सही है, तो दावत का काम तो सीखना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें सेलिंग सीखनी पड़ेगी, इंशाल्लाह आपको सेलिंग सिखाने की भी कोशिश करेंगे इस क्लास के अंदर भी, ठीक है। अच्छा, तो अबू बकर सिद्दीक रहा, उन्होंने दीन को सेल किया, ठीक है, और इस वजह से वो सबसे आगे निकल गए, अबू बकर सिद्दीक रतान सबसे आगे निकल गए, इतना आगे निकले, इतना आगे निकले कि नबी ने फरमाया कि मेरी पूरी उम्मत के जो नेक आमाल हैं, अगर उनको एक तराजू के पलड़े में रख दिया जाए और अबू बकर रतान के नेक आमाल को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो अबू बकर का पलड़ा भारी हो जाएगा, उनका जो साइड है ना बैलेंस का, वो भारी हो जाएगा, पूरे उम्मत के अमाल कम हो जाएंगे अबू बकर तारन के मुकाबले में। क्यों, अबू बकर सिद्दीक तारन की जिंदगी में 24 घंटे से ज्यादा होते थे क्या, कि वो इतनी नमाजें पढ़ते थे, इतनी नमाजें पढ़ते थे, और हर वक्त नमाज पढ़ते रहते थे, उनका इतने सवाब ज्यादा हो गया, हर वक्त जो है वो सदका खैरात, हर वक्त उम्रा करते रहते थे जैसे वो, इस वजह से उनके नामा अमाल में इतने ज्यादा नहीं, वो कम करते थे, बल्कि जो दूसरे सहाबा जितने अमाल करते थे ना, अबू बकर सिद्दीक रहा उससे भी कम अमाल करते थे, ठीक है, लेकिन उनको दीन की फिक्र भी थी, उनको इंसानों की भी फिक्र थी, ठीक है, इस वजह से वो सबसे आगे निकल गए, इसको दावत तबलीग कहते हैं, ठीक है। तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु, ये कौन थे, पिछली क्लास में जो आप लोगों को बताया था कौन थे, ये इनका टाइटल क्या था,
शाम को पता क्या था
कमांडर इन चीफ ऑफ द मुस्लिम आर्मी, ठीक है, कमांडर इन चीफ, जिन जिनके हाथों पे अल्लाह ताला ने पूरे के पूरे मुल्क शाम को भी और इराक का भी हिस्सा फतह करवाया ना, तो कितना कितना सवाब मिला होगा वो उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु को, क्योंकि वो इसका सबब बने ना, वो ही वाज़ द कमांडर इन चीफ। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु का सारा सवाब किसको मिला, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु को, क्यों, इसलिए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु जो है वो इनको लेकर के दीन इस्लाम में आए थे, ठीक है, नबी रसूलुल्लाह के पास लेकर के आए थे, तो ये ऐसे मुसलमान हुए, ठीक है। इनसे पहले जो है वो हजरत तलहा बिन उबैदिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो मुसलमान हुए थे, और ये 8वें मुसलमान थे, ठीक है। अच्छा टाइम कितना हो गया, 10 मिनट, 5 मिनट रह गए। अच्छा, इनके मुसलमान होने के बाद जाहिर है वो वाले मामला शुरू हो गए थे, तो ऐसा ऐसा करके जो है वो लोगों को पता चला कि अच्छा ये मुसलमान हो गए, ये मुसलमान हो गया, तो जो मक्का मुकरमा के काफिर थे, मुशरिकीन थे, उन्होंने जो है वो फिर मारना पीटना, जिसको मार सकते थे उसको मारते थे, जिसको पीट सकते थे उसको पीटते थे, और जिसको जुबान से जो है वो तकलीफ पहुंचा सकते थे उसको जुबानी तकलीफ पहुंचाते थे, ठीक है, टॉर्चर करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को कहा कि भाई तुम लोग जो है ना वो हिजरत कर जाओ ताइफ की, सॉरी हबशा की तरफ, ठीक है, हबशा वॉज इथियोपिया ऑफ टुडे, तो वहां पे हिजरत कर जाओ। तो पहली हिजरत जो मुसलमानों ने की थी वो हबशा की तरफ करी थी, और उनमें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। लेकिन कुछ अरसे के बाद कोई वजह बनी थी कि जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वहां से वापस मक्का मुकरमा आ गए थे, तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु भी जो है वो वापस मक्का मुकरमा आ गए। फिर उसके बाद जब नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत करी थी, तो उससे बस चंद दिन पहले ही, नबी अलैहिस्सलाम के सफर करने से चंद दिन पहले ही अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना मुनव्वरा भी हिजरत कर ली थी। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अभी बात हो गई कि ये कमांडर इन चीफ थे मुस्लिम आर्मी के जिसने शाम पे अटैक किया और इराक और फलस्तीन को फतह फरमाया था। ठीक है। अच्छा, इनका जिस्मानी डेल डोल भी बयान किया था हजरत ने कि लंबे कद के थे। इनके बारे में और हजरत खालिद बिन वलीद रजान के बारे में पढ़ा था कि ये इतने लंबे थे कि आपने घोड़ा देखा ना, असली घोड़ा, राइट, असली घोड़ा कितना लंबा होता। अच्छा, मुझे सऊद अंकल ने बताया जिनके घर में हम बैठे हुए कि अरे अरेबियन हॉर्स इतना लंबा नहीं होता, इतना ऊंचा नहीं होता है ना, उसका कद जो है वो यानी दूसरे हॉर्सेस से थोड़ा सा कम होता है, राइट। तो बहरहाल वो अरेबियन हॉर्स ही होता होगा एक उस जमाने में, तो लेकिन वो भी अच्छा खासा लंबा होता है, हमसे तो लंबा ही होता है ना। तो ये दोनों हजरात जो है ना, ये घोड़े पे ऐसे नहीं बैठते थे जिस तरह दूसरे लोग बैठते हैं कि उसके ऊपर पैर रखा, रकाब उसके ऊपर, फिर उसके बाद दूसरा पैर ऐसे चढ़ाया, ये पीछे से भागते हुए आते थे और जम करके बैठ जाते थे घोड़े के ऊपर। ठीक है। खालिद बिन वलीद भी और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु भी, तो ऐसे अल्लाह ने इनको लंबा कद भी दिया था, लेकिन जिस्म जो था ना इनका बड़ा कमजोर सा था, पतले दुबले से थे लेकिन लंबे थे, और गोश्त वोश्त जो था वो ऐसे नहीं थे कि मसल बिल्डर, आजकल बड़ा शौक है बच्चों को ना, मसल बनाए, जिम जाना है, जिम जाना है, और किसी चीज का टाइम नहीं मिलता, जिम जाने का टाइम सबको मिल जाता है। ये मैं हैरान उस बात के ऊपर है, कुरान मजीद गया, ठीक है, वो याद वाद खत्म, टाइम ही नहीं है यार, क्या करें, इतना मसरूफ है, लेकिन जिम जरूर जाना है, ठीक है, और किसी तरीके से अपना वेट लॉस नहीं कर सकते, जिम जाकर के वेट लॉस करना है। ठीक है। तो भाई ऐसे वेट लॉस का क्या फायदा, तो बहरहाल तो ये जो जिम में नहीं जाते थे सही है, तो बेचारे इनकी कोई मस्क्यूलर बॉडी नहीं थी, और इनके चेहरे के ऊपर भी जो है ना वो बड़े कम गोश्त जैसे, ऐसे पिचका हुआ जैसे गाल जरा ऊपर ऐसे नहीं हो बल्कि पिचके हुए गाल थे इनके। ठीक है। तो चेहरे पर भी इनके कम गोश्त था। नबी अलैहिस्सलाम इनके ऊपर बहुत ज्यादा एतमाद करते थे। तो एक दफा कुछ ईसाई लोग जो है ना वो मदीना मुनव्वरा आए, और उनमें दो आकिब और सैयद नाम के दो सरदार थे, ये नजरान से आए। नजरान तो पता है ना, सऊदी अरब के जो साउथ वेस्ट
ना
साइड पर बनता है ना नजरान, तो वहां से आकिब और सैयद ये दो सरदार आए थे, और इनका इरादा तो था कि आकर के ना नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो है वो बहस करेंगे और दलीलें देंगे अपनी, और अगर मुनाजरा नहीं कर सके तो मुबाहला करेंगे। मुबाहला क्या होता है कि जिसके अंदर आप किसी के साथ ये तय कर लेते हैं कि हम अल्लाह ताला से जा करके दुआ करते हैं कि अगर हम सच्चे हैं तो, अगर हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाए। ठीक है। इसको मुबाहला करना कहते हैं। तो इन्होंने आके जब नबी अलैहिस्सलाम को देखा ना, तो इनमें से एक दूसरे से कहने लगा कि भाई ये जो है ना, ये इनके साथ मुबाहला ना करना वरना मारे जाओगे। ठीक है ना, ये सच्चे लोग हैं, इनकी शक्ल से पता चल रहा है कि ये झूठ नहीं बोलते। तो इनके साथ हमने मुबाहला किया ना, तो फवल्लाही अल्लाह की कसम, लइन कान नबियन, ये वाकई अगर नबी निकले ना, तो फला अन्ना ला नुफलिहु नहनु वला अकिबुना मिम बा देना, कि अगर हमने इनके साथ मुबाहला कर लिया ना, तो अगर ये वाकई नबी निकल आए ना, तो फिर तो हम भी गए और हमारी औलादें भी गई, तो इनके साथ मुबाहला ना करना। ये इन्होंने एक दूसरे को मशवरा दिया, तय हो गया इनका कि ठीक है हम निकलते। तो अब ना इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमसे जो चाहते हैं ना वो हम आपको अदा कर देंगे, बस लड़ाई वड़ाई उनके साथ हमारे साथ ना करें। तो ऐसा करें कि आप अपना कोई अमीन आदमी जो है ना, ट्रस्ट वर्दी बंदा, वो हमारे साथ भेज दें, और हम उसको जो है ना वो जो आप हमसे कहेंगे कि जैसे कुछ पैसा दे दो, कुछ जो है वो हथियार वगैरह दे दो हमें, इस तरह से तय हो जाता था नॉन मुस्लिम्स के साथ कि भाई या तो पिछली क्लास में भी बात हुई थी कि या तो तुम मुसलमान हो जाओ, और अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो फिर हमें खिराज देना शुरू कर दो, कोई टैक्स देना शुरू कर दो। तो इन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम से ही कहा कि हम आपको टैक्स दे देते हैं, ठीक है, मुसलमान तो अभी नहीं है, हम नहीं होना चाहते, लेकिन टैक्स दे देते हैं, लेकिन टैक्स वसूल करने के लिए कोई ट्रस्ट वर्दी बंदा हमारे साथ भेजते हैं, ठीक है ना, जो कि अमीन हो, ट्रस्ट वर्दी हो। तो नबी अल्लाह फरमाया कि फिक्र ना करो, ला अब असन्ना माकुम रजुलन अमीनन हक का अमीनन, मैं जरूर बिल जरूर तुम्हारे साथ जो है ना वो एक अमीन आदमी को भेजूंगा जो कि पक्का अमीन है, बिल्कुल ट्रस्ट वर्दी किस्म का बंदा है। अब सारे सहाबा सुन रहे थे, उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको ये वाला टाइटल देते हैं, हम में से कौन वो खुश नसीब होगा जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि ये पक्का अमीन बनता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुम या अबा अबैदा, अबू अबैदा खड़े हो जाओ, ठीक है। तो अबू अबैदा खड़े हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हादा अमीनु हाजिल उम्मा, अमीनु हाजिल उम्मा, ये है इस उम्मत का अमीन, ठीक है, ये है इस उम्मत का अमीन। अजीब, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने सर्टिफिकेट दे दिया अमानतदारी का हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा ने, ठीक है। तो क्या इनका मुकाम था कि नबी अलैहिस्सलाम से ऐसे इनको एक्नॉलेज किया सब लोगों के सामने, ठीक है। तो हजरत आयशा सिद्दीका रतान का ये कॉल पढ़ के हम बस आज की क्लास खत्म कर लेते हैं कि आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम अगर अपने बाद किसी को खलीफा बाकायदा बनाते, नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को खलीफा बनाया नहीं ना, आप ने इशारे दिए कि जिनसे कि उम्मत को पता चला कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनना चाहिए, लेकिन किसी को कह के नहीं गए कि अबू बकर को मेरे बाद खलीफा बनाना, ठीक है। तो इस वजह से आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा से किसी ने सवाल पूछा कि अगर नबी अलैहिस्सलाम किसी को खलीफा मुतय्यन फरमाते तो किसको फरमाते हैं, आपके ख्याल में किसको फरमाते। तो उन्होंने फरमाया अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को, ठीक है। अच्छा, फिर पूछने वाले ने पूछा कि अच्छा उनके बाद किसको खलीफा बनाते, यानी सेकंड प्रायोरिटी क्या होती। तो फरमाया उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला, ठीक है। तो ये दोनों तो डन, अबू बकर सिद्दीक रतान और उमर बिन खत्ताब रतान, और बने भी ऐसे ही खलीफा। लेकिन पूछने वाले ने तीसरी दफा भी सवाल पूछा कि उनके बाद किसको बनाते, तो आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला, ठीक है। तो आयशा सिद्दीक रतान के नजदीक नबी अलैहिस्सलाम की थर्ड प्रायोरिटी जो है ना वो खिलाफत में, वो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह तआला होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर पूछने वाले ने चौथी दफा भी सवाल किया कि उनके बाद आपके ख्याल में किसको खलीफा बनाते, तो हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा खामोश हो गए, ठीक है। तो अब उनके ख्याल में मजीद कोई कंफर्म नहीं बता सकते थे, ठीक है। तो ये आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा का कॉल था, लेकिन फिर हुआ क्या ये कौन बताएगा, बस इसके ऊपर हम आपके लिए खत्म कर रहे हैं, बुक बंद है। सही है, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए बेचारे, हुआ क्या जी।
आप क्या आप सवाल तो मकसद क्या है, सवाल तो एक्सपीरियंस
हाँ, एक बड़ा अच्छा सवाल है कि सवाल का मकसद क्या है, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूं कि आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने, एक्चुअली मैं आपसे बड़ा सादा सा सवाल कर रहा हूँ, उसका कंक्लूजन तो मैंने बताना है आपको, कि आयशा सिद्दीका तआला ने तो नबी अलैहिस्सलाम की प्रायोरिटी बताई ना, अबू बकर सिद्दीक रतान, उमर रतान और अबू उबैदा बिन जर्रा रतान, और फिर फोर्थ में कुछ नहीं बताया, खामोश हो गए, ठीक है। लेकिन फिर एक्चुअली खिलाफत कैसे, कि कौन कौन बना फिर खलीफा और कैसे बना, ये बता दें अगर आप।
मैंने।
हाँ, तो अबू बकर सिद्दीक रतान कैसे खलीफा बने, ठीक है,
मैंने।
नहीं 6 लोगों ने नहीं, ठीक है। अबू बकर सिद्दीक रतान का वाकया हमने सबसे पहले ऑफ कोर्स पढ़ा था कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने उनको फॉरवर्ड किया, आगे किया, ठीक है। और बाकी जितने लोग वहां पे मौजूद थे सब ने एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है, बिल्कुल यही यही होने चाहिए खलीफा, सब ने बैत कर ली अबू बकर सिद्दीक रतान के हाथ के ऊपर, ठीक है। फिर जब उनका इंतकाल होने लगा तो उन्होंने फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेकर के कहा कि ये मेरे बाद खलीफा बनेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उमर बिन फारूक, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो बन गए खलीफा, ठीक है। फिर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद क्या होगा, उनके बाद तीसरे खलीफा कैसे बने थे, ये तो चले आप लोग बता सकते हैं ना जी रेहान,
उस्मान
बने तो लेकिन वो कैसे बने थे। जी जी
कमेटी
उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमेटी बनाई, कमेटी के नाम पता है किसी को, याद है कमेटी में कौन कौन थे, छह लोग थे, इतना तो मैं बता दे रहा हूँ, गेस कर लें। जी शाह
अब्दुलरहमान में नौ
चले,
प्रजनन
कितने रह गए, दो रह गए ना।
नहीं
नहीं अच्छा कौन, आप रेहान, चले बता।
जुबैर
नहीं
अजीला
अली रतन का बता दिया उन्होंने, ठीक है। जुबैर रतन के साथ साथ हमेशा किन करना, तलहा रजी लतारान, ठीक है, जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। तो कौन से छह लोग थे जिनका नाम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिया, ठीक है, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि बाकी बने भी, फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि उनके बाद खलीफा बने, ठीक है, तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू ये अब्दुलरहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु किधर है, वो नहीं थे इसके अंदर, वो इस छह रुकनी कमेटी के अंदर नहीं थे जिनका नाम उमर फारूक रज़ियल्लाहु ने लिया। हालांकि आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु क्या फरमा रही है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम किसी को खलीफा बनाते तो थर्ड प्रायोरिटी, दो तो बन गए थे, दो तो वाकई बन गए, तो वो हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु का नाम ले रही है, और उमर रज़ियल्लाहु ने अबू उबैदा जर्रा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु को उस छह रुकनी कमेटी के अंदर शामिल ही नहीं किया, ठीक है, क्यों, दो वजह भाई। उमर अतान अपने मुज्तहिद थे, वो खुद मुज्तहिद थे, ठीक है ना, उनको उनका इल्म अलग था, आयशा सिद्दीक रतान का इल्म अलग था, ठीक है ना, आयशा सिद्दीक रतान ने जो फरमाया वो अपने इल्म के मुताबिक बताया, और उमर रतान ने जो कमेटी बनाई उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक कमेटी बनाई, ठीक है ना, तो उमर फारूक रतान थे ना उस मकाम पे कि जो कि वो कमेटी बना सकते थे अपने इल्म के मुताबिक, ठीक है ना। और दूसरी चीज जो कि एक बजाहिर एक उसकी रीजन नजर आती है वो क्या, कि शायद उसकी ये वजह हो कि अबू उबैदा बिन जर्रा रतान जो थे ना, ये थे बॉर्डर के ऊपर काम करने वाले, ये मुस्तकिल बॉर्डर पर रहने वाले लोग थे जो कि वहां पर जाकर के लड़ाइयां कर रहे थे, अगर ये मदीना मुनव्वरा आ जाते तो फिर इनका वो वाला जो टास्क था ना वो फिर इफेक्ट हो सकता था, ठीक है ना, इनको अल्लाह ताला ने उस काम के लिए पसंद किया, कबूलियत दी और उनको ऐसी सलाहियतें दी कि ये मैदान जंग में लड़ने वाले लोग थे और कमांडर इन चीफ वाली पोजीशन को ये हैंडल कर सकते थे, ठीक है। तो गालिबन ये हिकमत थी उमर फारूक खतान की कि इनको मदीना मुनव्वरा आकर के ना ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब नहीं देनी है, ये तो कमांडर इन चीफ है, ये चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ही रहे, ठीक है, इस तरह से होता है जी।
नहीं बताने लगे दो सौ लोग इंतकाल के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने दो लोगों को आगे तरह से खिलाफत की, तो उनमें से उमर रजी अल्लाह ताला ने वो बेहतरीन जवाब हो चुकी।
जी बिल्कुल, ठीक है, तो वो पहले हुआ था उससे, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुद जो है वो सबसे पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु अन्हु को आगे कर दिया था कि इन दोनों में से किसी को तुम पसंद कर लो अपने खलीफा के लिए, लेकिन फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको आगे कर दिया था, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को। जी
जहाँ तक मुझे आज पढ़ते वो की शहादत हो गई थी रजीरा के दौर में भी
हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जज़ाकअल्लाह खैर, ठीक है, ये अभी मेरे जहन में अभी ही खिचड़ी पक रही थी तो आपके सामने, और अलहमदुल्ला शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि उमर रज़ियल्लाहु के जमाने में ही ना हजरत अबू उबैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु की शहादत हो गई थी ताउन के मर्ज से, वहां पर एक प्लेग फैल गई थी शाम के अंदर, वो हमने आगे पढ़ना भी था, तो उनकी शहादत ही हो गई, तो फिर जाहिर वो थे ही नहीं तो कमेटी में वो कैसे दाखिल होते, सही है। चले वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम नमाज पढ़ लेते हैं पहले।
हाँ।